जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सद ग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ, ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, यह जगत दीर्घ स्वप्न रूप अपने अनुभव से उदय हुआ है, सो बाह्य रूप होकर भासता है। उस स्वप्न से और स्वप्नांतर होता है, उसके आगे और सपना होता है। इसी प्रकार सृष्टि की स्थिति हुई है। जैसे एक बीज से अनेक वृक्ष होते हैं, तैसे ही एक चीद अणु में अनेक सृष्टि स्थित है। जैसे जल में अनेक तरंग भासते हैं, तैसे ही आत्म अनुभव में अनेक जगत भासते हैं और अभिन्न रूप हैं। इससे द्वैत भ्रम को तुम त्याग दो। न कोई देश है, न काल क्रिया है, केवल एक अद्वैत आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। ब्रह्मा से कीट पर्यंत जो जगत भासता है, सो एक परमात्मा ही अपने आप में किंचन रूप होता है। जैसे एक रस सत्ता ही कहीं फल और सुगंध सहित भासती है और कहीं काष्ठ रूप को प्राप्त होती है, तैसे ही एक परमात्म सत्ता कहीं चैतन्य और कहीं जड़ रूप होकर दिखाई देती है। जो सर्वगत अविनाशी आत्मा है, वही सबका बीज रूप है और उसी के भीतर सब जगत स्थित है। पर जिसको आत्मा का प्रमाद है, उसको नाना रूप भासता है। जैसे कोई जल में डूबे और फिर निकले, फिर डूबे फिर निकले, और जैसे स्वप्न में और स्वप्न होता है, तैसे ही प्रमाद दोष से भ्रम से भ्रमांतर नाना प्रकार के जगत जीव देखता है। जगत और आत्मा में कुछ भेद नहीं है, क्योंकि जगत कुछ है ही नहीं, आत्मा ही जगत सा हो भासता है।
ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 38। देवी बोली, हे लीले, मैंने तुझे पापात्मा की मृत्यु कही, अब तू धर्मात्मा की मृत्यु सुन। जो महाधर्मात्मा है, वह जब मृतक होता है, तब उसके निमित्त विमान आते हैं, उन पर आरूढ़ करा के उसे स्वर्ग में ले जाते हैं। जिस इष्ट देवता की वासना उसके हृदय में होती है, उसके लोक में उसे ले जाते हैं और उसके कर्मानुसार स्वर्ग सुख भुगताता है। और स्वर्ग सुख जो गंधर्व, विद्याधर, अप्सरा आदि भोग है, उनको भोग के फिर गिरता है और किसी फल में स्थित होता है। जब उस फल को मनुष्य भोजन करता है, तब वीर्य में जाकर स्थित होता है और उस वीर्य से माता के गर्भ में स्थित होता है। वहां से वासना के अनुसार फिर जन्म लेता है। जो भोग की कामना होती है, तो श्रीमान धर्मात्मा के गृह में जन्म लेता है। और जो भोग से निष्काम होता है, तब संतजनों के गृह में जन्म लेता है। अब मध्यम धर्मात्मा की मृत्यु सुनो। हे लीले, जो मध्यम धर्मात्मा मृतक होता है उसको शीघ्र ही चैतन्यता फुराती है और वह स्वर्ग में जाकर अपने पुण्य के अनुसार स्वर्ग भोग के फिर गिरकर किसी फल में स्थित होता है। जब फिर उस फल को कोई पुरुष भोजन करता है तब पिता के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। अल्प धर्मात्मा जब मृतक होता है तब उसको यह फुराता है कि मैं मृतक हुआ हूं, मेरे बांधवों और पुत्रों ने मेरी पिंड क्रिया की है और पितरलोक में चला जाता हूं। वहां वह पितरलोक का अनुभव करता है और वहां के सुख भोग के गिरता है, तब धान्य में स्थित होता है। जब उस धान्य को पुरुष भोजन करता है तब वीर्य रूप होकर स्थित होता है, फिर उस वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आ जाता है और वासना के अनुसार जन्म लेता है। हे लीले, जब पापी मृतक होता है तब उसको महाक्रूर मार्ग भासता है और उस मार्ग पर चलता है जिसमें चरणों में कंटक चुभते हैं, शीश पर सूर्य तपता है और धूप से शरीर कष्टवान होता है। जो पुण्यवान होता है उसको सुंदर छाया का अनुभव होता है और बावली और सुंदर स्थानों के मार्ग से यमदूत उसको धर्मराज के पास ले जाते हैं। धर्मराज चित्रगुप्त से पूछते हैं कि चित्रगुप्त, पुण्यवानों के पुण्य और पापियों के पाप प्रकट करते हैं और वह कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक को भुगताता है, फिर वहां से गिर के धान्य अथवा किसी फल में आन स्थित होता है। जब उस अन्न को पुरुष भोजन करता है तब वह स्वप्न वासना को लेकर वीर्य में आन स्थित होता है। जब पुरुष का स्त्री के साथ संयोग होता है तब वीर्य द्वारा माता के गर्भ में आता है, वहां भी अपने कर्मों के अनुसार माता के गर्भ को प्राप्त होता है और उस माता के गर्भ में इसको अनेक जन्मों का स्मरण होता है। फिर बाहर निकल के महामूढ़ बाल अवस्था धारण करता है, तब उसे पिछली स्मृति विस्मरण हो जाती है और परमार्थ की कुछ सुध नहीं होती, केवल क्रीड़ा में मग्न होता है। उसमें आगे यौवन अवस्था आती है तो काम अधिक विकारों से अंधा हो जाता है और कुछ विकार नहीं, विचार नहीं रहता। फिर वृद्धावस्था आती है तो शरीर महाकृश हो जाता है, बहुत रोग उपजते हैं और शरीर कुरूप हो जाता है। जैसे कमलों पर बर्फ पड़ती है तो कुम्हिला जाते हैं, वैसे वृद्धावस्था में शरीर कुम्हिला जाता है और सब शक्ति घटकर तृष्णा बढ़ती जाती है। फिर कष्टवान होकर मृतक होता है तब वासना के अनुसार स्वर्ग नरक के भोगों को प्राप्त होता है। इस प्रकार संसार चक्र में वासना के अनुसार घटी यंत्र किनाई भ्रमता है, स्थिर कदाचित नहीं होता। हे लीले, इस प्रकार जीव आत्मपद के प्रमाद से जन्म मरण को पाता है और फिर माता के गर्भ में आके बाल यौवन वृद्ध और मृतक अवस्था को प्राप्त होता है। फिर वासना के अनुसार परलोक देखता है और जागृत को स्वप्ने किनाई भ्रम से फिर देखता है। जैसे स्वप्न से स्वप्नांतर देखता है वैसे ही अपनी कल्पना से जगत भ्रम फुरता है। स्वरूप में किसी को कुछ भ्रम नहीं, आकाश रूप आकाश में स्थित है, भ्रम से विकार भासते हैं। लीला ने पूछा, हे देवी, पर ब्रह्म में यह जगत भ्रम से कैसे हुआ है, मेरे बोध की दृढ़ता के निमित्त कहो। देवी बोली, हे लीले, सब आत्मरूप है, पहाड़ वृक्ष पृथ्वी आकाश आदि स्थावर जंगम जो कुछ जगत है वह सब परमार्थ घन है और परमार्थ सत्ता ही सर्वात्मा है। हे लीले, उस सत्ता संवित आकाश में जब संवेदन आभास फुरता है तब जगत ब्रह्म भासता है। आदि संवेदन जो संवित मात्र में हुआ है सो ब्रह्मरूप होकर स्थित हुआ है, और जैसे वह चेतता गया उसी प्रकार स्थावर जंगम जगत होकर स्थित हुआ है। हे लीले, शरीर के भीतर नाड़ी है, नाड़ी में छिद्र है और उन छिद्रों में स्पंद रूप होकर प्राण विचरता है, उसको जीव कहते हैं। जब वह जीव निकल जाता है तब शरीर मृतक होता है। हे लीले, जैसे जैसे आदि संवित मात्र में संवेदन फुरा है वैसे ही वैसे अब स्थित है। जब उसने चेता कि मैं जड़ हूं तब वह जड़ रूप पृथ्वी अब तेज वायु आकाश पर्वत वृक्ष आदि स्थित हुआ, और जब चेतन की भावना की तब चेतन रूप होकर स्थित हुआ। हे लीले, जिसमें प्राण क्रिया होती है वह जंगम रूप बोलते चलते हैं, और जिसमें प्राण स्पंद क्रिया नहीं पाई जाती सो स्थावर रूप आत्मसत्ता में है, दोनों ही तुल्य है। जैसे जंगम है वैसे ही स्थावर है और दोनों चैतन्य है। जैसे जंगम में चैतन्यता है वैसे ही स्थावर में चैतन्यता है। यदि तू कहे कि स्थावर में चेतनता क्यों नहीं भासती तो उसका उत्तर यह है कि जैसे उत्तर दिशा के समुद्र वाले मनुष्य की बोली को दक्षिण दिशा के समुद्र वाले नहीं जानते, और दक्षिण दिशा के समुद्र वाले की बोली उत्तर दिशा के समुद्र वाले नहीं समझ सकते, वैसे ही स्थावरों की बोली जंगम नहीं समझ सकते और जंगमों की बोली स्थावर नहीं समझ सकते। परंतु परस्पर अपनी अपनी जाति में सब चेतन है, उसका ज्ञान उसको नहीं होता और उसका ज्ञान उसको नहीं होता। जैसे एक कूप का दरदूर और कूप के दरदूर को नहीं जानता और दूसरे कूप का दरदूर उस कूप के दरदूर को नहीं जानता, वैसे जंगमों की बोली स्थावर नहीं जान सकते और स्थावरों की बोली जंगम नहीं जान सकते। हे लीले, जो आदि संवित में संवेदन फुरा है वैसा ही रूप होकर महाप्रलय पर्यंत स्थित है, अन्यथा नहीं होता। जब उस संवित में आकाश का संवेदन फुरता है तब आकाश रूप होकर स्थित होता है। जब स्पंदनता को चेतता है तब वायु रूप होकर स्थित होता है। जब उष्णता को चेतता है तब अग्नि रूप होकर स्थित होता है। जब द्रवता को चेतता है तब जल रूप होकर स्थित होता है, और जब गंध की चिंतवना करता है तब पृथ्वी रूप होकर स्थित होता है। इसी प्रकार जिन जिन को चेतता है वे पदार्थ प्रकट होते हैं, आत्मसत्ता में सब प्रतिबिंबित है। वास्तव में न कोई स्थावर है न जंगम है, केवल ब्रह्म सत्ता ज्यों की त्यों अपने आप में स्थित है, और उसमें भ्रम से जगत भासते हैं, दूसरी कुछ वस्तु नहीं। हे लीले, अब राजा विदुरथ को देख कि मृतक होता है। लीला ने पूछा, हे देवी, यह राजा पद्म के शरीर वाले मंडप में किस मार्ग से जावेगा और इसके पीछे हम किस मार्ग से जावेंगे? देवी बोली, हे लीले, यह अपनी वासना के अनुसार मनुष्य मार्ग के राह जावेगा। है तो यह चिदाकाश रूप, परंतु अज्ञान के वश इसको दूर स्थान भासेगा और हम भी इसी मार्ग से इसके संकल्प के साथ अपना संकल्प मिला के जावेंगे। जब तक संकल्प से संकल्प नहीं मिलता तब तक एकत्व भाव नहीं होता। इतना कहे वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी जी ने लीला को परम बोध का कारण उपदेश किया कि इतने में राजा जर्जरीभूत होने लगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार देवी और लीला देखती थी कि राजा के नेत्र फट गए और शरीर निरस होकर गिर पड़ा और श्वास नासिका के मार्ग से निकल गया। तब जैसे रस रहित पत्र और कटा हुआ कमल विरस हो जाता है, वैसे ही राजा का शरीर निरस हो गया। जो कुछ चित्त की चैतन्यता थी वह जर्जरीभूत हो गई, मृत्यु मूर्छारूपी अंधकूप में जा पड़ा और चेतना और वासना संयुक्त प्राण आकाश में जा स्थित हुए। प्राणों में जो चेतना थी और चेतना में वासना थी, उस वासना और चेतना सहित प्राण जैसे वायु गंध को लेकर स्थित होता है, आकाश में जाकर स्थित हुआ। हे रामचंद्र जी, राजा की पुरेष्टका तो जर्जरीभूत हो गई, परंतु दोनों देवियां उसको दिव्य दृष्टि से ऐसे देखती थी जैसे भ्रमरी गंध को देखती है। राजा एक मुहूर्त पर्यंत तो मूर्छा में रहा, फिर उसको चेतनता फुराई और अपने साथ शरीर देखने लगा। उसने जाना कि मेरे बांधवों ने मेरी पिंड क्रिया की है, उसको मेरा शरीर भया है और धर्मराज के स्थान को मुझे दूत ले चले हैं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार अनुभव करता वह धर्मराज के स्थान को चला और उसके पीछे देवी जैसे वायु के पीछे गंध चली जाती है चली। जैसे गंध के पीछे भ्रमरी जाती है, वैसे ही राजा विदुरत धर्मराज के पास पहुंच गया। धर्मराज ने चित्रगुप्त से कहा कि इसके कर्म विचार के कहो। चित्रगुप्त ने कहा, हे भगवान, इसने कोई अपकर्म नहीं किया बल्कि बड़े बड़े पुण्य किए हैं और भगवती सरस्वती का इसको वर है। इसका शव फूलों से ढका हुआ है, उस शरीर में यह भगवती के वर से जाकर प्रवेश करेगा। इसे अब कुछ कहना पूछना नहीं, यह तो देवी जी के वर से बंधा है। हे रामचंद्र जी, ऐसे कहकर यमराज ने राजा को अपने स्थान से चला दिया। तब राजा आगे चले और उसके पीछे दोनों देवियां चली। राजा को यह देवियां देखती थी पर राजा इनको न देख सकता था। तब तीनों उस ब्रह्मांड को लांघ के जिसका राज्य विदुरथ ने किया था दूसरे ब्रह्मांड में आए और उसको भी लांग के पद्म राजा के देश में आकर उसके मंदिर में जहां फूलों से ढका शव था आए। जैसे मेघ से वायु आन मिलता है, वैसे ही एक क्षण में देवियां आन मिली। राम जी ने पूछा, हे भगवन, वह राजा तो मृतक हुआ था, मृतक होकर उसने उस मार्ग को कैसे पहचाना? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, वह विदुरथ जो मृतक हुआ था उसकी वासना नष्ट नहीं हुई थी, अपनी उस वासना से यह अपने स्थान को प्राप्त हुआ। हे रामचंद्र जी, चिद अणु जीव के उदर में भ्रांति मात्र जगत है। जैसे वट के बीज में अनंत वट वृक्ष होते हैं, वैसे ही चिद अणु में अनंत जगत है। जो अपने भीतर स्थित है उसको क्यों न देखे? जैसे जीव अपने जीवत्व का अंकुर देखता है, वैसे ही स्वाभाविक चिद अणु त्रिलोकी को देखता है। जैसे कोई पुरुष किसी स्थान में धन दबा रखे और आप दूर देश में जावे तो धन को वासना से देखता है, वैसे ही वासना की दृढ़ता से विदुरथ ने देखा। और जैसे कोई जीव स्वप्न भ्रम से किसी बड़े धनवान के गृह में जाकर उपजता है और भ्रम के शांत होने पर उसका अभाव देखता है, वैसे ही उसको अनुभव हुआ। श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिसकी वासना पिंडदान क्रिया की नहीं होती, वह मृतक होने पर अपने साथ कैसे देह को देखता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पुरुष जो माता पिता के पिंड करता है, उसकी वासना हृदय में होती है और वही फल रूप होकर भासित होता है कि मेरा शरीर है, मेरे पीछे मेरे बांधवों ने पिंडदान किया है, उससे मेरा शरीर हुआ है। हे रामचंद्र जी, सदेह हो अथवा विदेह, अपनी वासना ही के अनुसार अनुभव होता है, भावना से भिन्न अनुभव नहीं होता। चित्तमय पुरुष है, चित्त में जो पिंड की वासना दृढ़ होती है तो आपको पिंडवान ही जानता है और भावना के वश से असत भी सत हो जाता है। इससे पदार्थों का कारण भावना ही है, कारण बिना कार्य का उदय नहीं होता। महाप्रलय पर्यंत कारण बिना कार्य होता नहीं देखा और ना ही सुना भी है। इससे कहा है कि जैसी वासना होती है वैसा ही अनुभव होता है। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जिस पुरुष को अपने पिंडदान आदि कर्मों की वासना नहीं, वह जब मृतक होता है तब क्या प्रेत वासना संयुक्त होता है कि मैं पापी और प्रेत हूं, अथवा पीछे उसके बांधव जो उसके निमित्त क्रिया कर्म करते हैं और जो बांधवों ने पिंड क्रिया की है उससे उसे यह भावना होती है कि मेरा शरीर हुआ है, वह क्रिया उसको प्राप्त होती है वा नहीं होती, अथवा उसके बांधवों के मन में यह दृढ़ भावना हुई कि इसको शव क्रिया प्राप्त होगी और वह अपने मन में धन अथवा पुत्र आदि को के अभाव से निराश है और किसी प्रभाव से किसी के पिंड आदि क्रिया की वह उसको प्राप्त होती है अथवा नहीं होती है। आप तो कहते हैं कि भावना के वश से असत भी सत हो जाता है, यह क्या है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, भावना, देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा, इन पांचों से होती है। जैसी भावना होती है वैसे ही सिद्धि होती है। जिसकी कर्तव्यता बली होती है उसकी जय होती है। पुत्र दारा आदि बांधो सब वासना रूप है। जो धर्म की वासना होती है तो बुद्धि में प्रसन्नता उपजाती है और पुण्य कर्मों से पूर्व भावना नष्ट हो शुभ गति प्राप्त होती है। जो अति बलि वासना होती है उसकी जय होती है। इससे अपने कल्याण के निमित्त शुभ का अभ्यास करना चाहिए। राम जी बोले, हे भगवान, जो देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा, इन पांचों से वासना होती है तो महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा कोई नहीं होती, तो जहां पांचों कारण नहीं होते और उसकी वासना भी नहीं होती, उस अद्वैत से जगत भ्रम फिर कैसे होता है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, महाप्रलय और सर्ग के आदि में देश, काल, क्रिया, द्रव्य और संपदा कोई नहीं रहती और निमित्त कारण और समवायिक कारण का अभाव होता है। चिदात्मा में जगत कुछ उपजा नहीं और है भी नहीं। वास्तव में दृश्य का अत्यंत अभाव है और जो कुछ भासता है वह ब्रह्म का किंचन है। वह ब्रह्म सत्ता सदा अपने आप में स्थिर है। ऐसे ही अनेक युक्तियों से मैं तुमसे कहूंगा, अब तुम पूर्व कथा को सुनो। हे रामचंद्र जी, जब वे दोनों देवियां उस मंदिर में पहुंची तो क्या देखा कि फूलों से सुंदर शीतल स्थान बने हुए हैं। जैसे वसंत ऋतु में वन भूमिका होती है और प्रातः काल का समय है, सुवर्ण के मंगल रूपी कुंभ जल से भरे रखे हैं, दीपों की प्रभा मिट गई है, किवाड़ चढ़े हैं, मंदिरों में सोए हुए मनुष्यों के श्वास आते जाते हैं और महासुंदर झरोखे हैं। ऐसे बने हुए स्थान शोभा देते हैं जैसे संपूर्ण कला से चंद्रमा शोभता है और जैसे इंद्र के स्थान सुंदर है। जिस सुंदर कमल से ब्रह्मा जी उपजे हैं वैसे ही वे कमल सुंदर है। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब दोनों देवियों ने उस शव के पास विदुरथ की लीला को देखा। वह उसकी मृत्यु से पहले वहां पहुंची और पूर्व के से ही वस्त्र भूषण पहरे हुए, पूर्व का सा आचार किए, पूर्व के से सुंदर है और पूर्व का सा ही उसका शरीर है एवं उसका सुंदर मुख चंद्रमा किनाई प्रकाशता है और महासुंदर फूलों की भूमि पर वह बैठी है। निदान लक्ष्मी के समान लीला और विष्णु के समान राजा को देख, पर जैसे दिन के समय चंद्रमा की प्रभा मध्यम होती है वैसे ही उन्होंने लीला को कुछ चिंता सहित राजा की बाईं ओर एक हाथ चिबुक पर रखे और दूसरे हाथ से राजा को चमर करती हुए देखा। पूर्व लीला ने इसको न देखा क्योंकि ये दोनों प्रबुद्ध आत्मा और सत्संकल्प थे और वह लीला इसके समान प्रबुद्ध न थी। राम जी ने पूछा, हे भगवान, उस मंडप में पूर्व लीला जो देह को स्थापन कर और ध्यान में विदुरथ की सृष्टि देखने को सरस्वती के साथ गई थी, उस देह का अपने आपने कुछ वर्णन न किया कि उसकी क्या दशा हुई और कहां गई। तब वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, लीला कहां थी, लीला का शरीर कहां था और उसकी सत्ता कहां थी। वह तो अरुंधति के मन में लीला के शरीर की भ्रांति प्रतिभा हुई थी। जैसे मरुस्थल में जल की प्रतिभा होती है वैसे ही लीला के शरीर की प्रतिभा उसे हुई थी। हे रामचंद्र जी, यह आदि भौतिक अज्ञान से भासता है और बोध से निवृत्त हो जाता है। जब उस लीला को बोध में परिणाम हुआ तब उसका आदि भौतिक शरीर निवृत्त हो गया। जैसे सूर्य के तेज से बर्फ का पुतला गल जाता है और अंतवाहकता उदय हुई। हे रामचंद्र जी, जो कुछ जगत है वह सब आकाश रूप है। जैसे रस्सी में सर्प भ्रम से भासता है वैसे ही अंतवाहकता में आदि भौतिकता भ्रम से भासती है। आदि शरीर अंतवाहक है अर्थात संकल्प मात्र है। उसमें दृढ़ भावना हो गई, उससे पृथ्वी आदि तत्वों का शरीर भासने लगा। वास्तव में न कोई भूत आदि तत्व है और न कोई तत्वों का शरीर है। उसका शव शशे के श्रृंग किनाई असत है। हे रामचंद्र जी, आत्मा में अज्ञान से आदि भौतिक भासे हैं। जब आत्मा का बोध होता है तब आदि भौतिक नष्ट हो जाते हैं। जैसे किसी पुरुष ने स्वप्न में आपको हरिण देखा और जब जाग उठा तब हरिण का शरीर दृष्टि नहीं आया, तैसे ही अज्ञान से आधी भौतिकता दृष्टि आई है और आत्मबोध हुए आधी भौतिकता दृष्टि नहीं आती। जब सत्य का ज्ञान उदय होता है तब असत का ज्ञान लीन हो जाता है। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है और रस्सी के ज्ञान से सर्प का ज्ञान लीन हो जाता है, तैसे ही संपूर्ण जगत मन से उदय हुआ है और अज्ञान से आधी भौतिकता को प्राप्त हुआ है। जैसे स्वप्न में जगत आधी भौतिक हो भासता है और जागे से स्वप्न शरीर नहीं भासता, तैसे ही आत्मज्ञान से आधी भौतिकता निवृत्त हो जाती है और अंतवाहक शरीर भासता है। राम जी बोले, हे भगवान, योगीश्वर जो अंतवाहक शरीर से ब्रह्मलोक पर्यंत आते जाते हैं उनके शरीर कैसे भासते हैं? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अंतवाहक शरीर ऐसे है जैसे कोई पुरुष स्वप्न में हो, उसको पूर्व के जागृत शरीर का स्मरण हो, तब स्वप्न शरीर दृष्टि भी आता है पर उसको आकाश रूप जानता है, तैसे ही आधी भौतिकता बोध से नष्ट हो जाती है। जैसे शरद काल का मेघ देखने मात्र होता है, तैसे ही ज्ञानवान योगीश्वरों का शरीर देखने मात्र होता है और अदृश्य रूप है, और को शरीर भासता है पर उसको आकाश रूप ही भासता है। हे रामचंद्र जी, यह देहादिक आत्मा में भ्रांति से दृष्टि आते हैं, आत्मज्ञान से निवृत्त हो जाते हैं। जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, जब रस्सी का सम्यक ज्ञान होता है तब सर्प भाव उसका नहीं रहता, तैसे ही तत्व बोध होने से देह कहाँ हो और देह की सत्ता कहाँ रहे, दोनों का अभाव हो जाता है, केवल अद्वैत ब्रह्म सत्ता ही भासित होती है। हरि ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।